माहिरा ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा, लेकिन फैजान की नज़रों में अजीब सा यकीन था। कुछ हफ्ते और, उसने धीरे से कहा, फिर तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। माहिरा ने उसकी बात का मतलब कुछ और समझा। ठीक है, अब आओ खाना खाते हैं, उसने बात खत्म करते हुए कहा। मगर फैजान का मतलब कुछ और था। वो जानता था जिस दिन वो ऑफिसर बनेगा उस दिन ये सारी बातें खुद बखुद खत्म हो जाएंगी। दरवाजे के बाहर खड़ी जुबैदा बेगम सब कुछ चुपचाप सुन रही थीं। उनकी आंखों में सोच थी। माहिरा के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई थी। वो फैजान से तलाक लेने के बारे में सोच रही थी। वो फैजान के पीछे पीछे बाहर तक आ गई। फैजान जैसे ही घर से निकला उसी वक्त गेट के अंदर अरमान की गाड़ी दाखिल हुई और दूसरी तरफ रेहान की गाड़ी घर से निकलकर धीरे धीरे उसके पीछे आ लगी। फैजान ने एक नज़र पीछे डाली। उसे एहसास हो चुका था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। घर के बाहर आकर वो खड़ा हो गया था। ऑनलाइन कैब बुक की थी, उसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और वो उतरी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ी। किस बात का इतना गुरूर है तुम्हें? मुझे तो लग रहा है तुम कोई पीएम नहीं, किसी बावर्ची का काम कर रहे हो और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो। फैजान ने हल्का सा भौं उठाया। बावर्ची? उसने दोहराया, जैसे शब्द समझने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, रेहान ने ताना मारा, मसूरी वाली जो सिविल की तैयारी करवाने वाली एकेडमी है वहीं रह रहे हो ना तुम? ऑफिसर तो बने नहीं होगे, तो सोचा कोई छोटा मोटा काम मिल गया होगा, पीएन या माली जैसा कुछ। फैजान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ओह, तो मेरी जासूसी भी हो रही है। तुम्हारी? रेहान हंसा। मैं चाहूं तो बहुत कुछ करवा सकता हूं, फिलहाल तो बस तुम्हारी लोकेशन निकलवाई थी। फैजान ने उसकी आंखों में सीधा देखा। चौकीदार लग रहे हो या फिर खुद ही पीएन बन गए हो वहां? रेहान ने फिर तंज कसा। इस बार फैजान हल्का सा आगे बढ़ा। आवाज धीमी थी लेकिन शब्द सीधे दिल में उतरने वाले। काम कोई भी छोटा नहीं होता रेहान, इज्जत तब बनती है जब उसे ईमानदारी से किया जाए। रेहान ने होंठ टेढ़े किए। ठीक है, एक दिन देखने आऊंगा तुम्हारी इज्जत। फैजान मुस्कुराया। आने से पहले फोन कर देना, कम से कम अपनी बेइज्जती से तो बच जाओगे। तुम भी अपनी बहन से मिलने से पहले फोन करके आना, रेहान ने जाते जाते कहा। फैजान की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। रेहान ने मुड़कर उसे देखा। क्योंकि तुम्हारी बहन के घर की मजबूत बुनियाद अब हिल चुकी है। ये सुनते ही फैजान की नजरें ठंडी हो गईं। वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि रेहान उसकी बहन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर चुका था। वो निकाह जो सिर्फ एक समझौता था, अब उसी का सहारा लेकर रेहान सब कुछ हासिल कर चुका था। और सबसे खतरनाक बात, जिस इंसान का दिल कहीं और था वो सादिया की जिंदगी को सिर्फ एक बोझ समझेगा। रेहान गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया वो रुका, हल्का सा पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में ठंडी बेरुखी थी। जानते हो, उसने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, आज मुझे एक बात का एहसास हुआ है। फैजान अब पूरी तरह उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारी बहन सादिया? रेहान ने नाम लेते हुए हल्की सी हंसी छोड़ी। उसे जबरदस्ती मेरे नाम से बांधा गया है। एक सेकेंड का पॉज। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना है। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। फैजान की आंखों में अब सिर्फ खामोशी थी। वो सब समझ रहा था लेकिन अभी भी खुद को रोक रहा था, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं था जो हर बात पर फट पड़े। लेकिन अंदर कुछ टूटने लगा था। रेहान ने उसे एक आखिरी नजर देखा, फिर गाड़ी में बैठा और निकल गया। गाड़ी दूर जाती रही और वहीं खड़ा फैजान अब धीरे धीरे फोन निकाल रहा था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही सख्ती थी। अब ये सिर्फ बात नहीं थी, ये हिसाब होने वाला था। अरमान तेज कदमों से माहिरा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर साफ गुस्सा था। फैजान का अचानक आना उसे अंदर तक खल गया था। दरवाजा बिना नॉक किए ही खोल दिया उसने। माहिरा उसे देखते ही खुश हो उठी। तुम्हें पता है फैजान आया था? उसकी आवाज में राहत थी, जैसे कोई बड़ी समस्या हल हो गई हो। अरमान की आंखें सिकुड़ी। वही तो पूछने आया हूं, वो यहां क्या कर रहा था? माहिरा मुस्कुराई। फाइनली वो मुझे डाइवोर्स दे रहा है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? अरमान के होठों से निकला। क्या कह रही हो तुम? हाँ, माहिरा ने ऑलमोस्ट खुशी से कहा, वो मान गया है मुझे तलाक देने के लिए। अरमान की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीमे से पूछा, मगर कैसे? उसके चेहरे पर शक साफ था। उसे लगा इतनी आसानी से फैजान मान ही नहीं सकता। फिर अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या फैजान और नूर? माहिरा ने उसकी खामोशी तोड़ी, नूर के लिए। नूर? अरमान ने दोहराया। हाँ, रेहान ने कहा, रेहान के घर की मेट बता रही थी, फैजान इन दिनों नूर के घर रह रहा है। उसने बिना सोचे आगे कहा, अब इतनी बातें फैल रही हैं, कुछ तो सच होगा ना। असलियत से बिल्कुल अनजान, माहिरा ने नौकरानी की बातों को ही सच मान लिया था। अरमान की मुट्ठियां भीज गईं। इस बात का क्या मतलब हुआ? उसने सख्ती से पूछा। माहिरा ने सीधा जवाब दिया, मतलब ये कि अब वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन अरमान की आंखों में अब सिर्फ शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है असल में उतनी है नहीं। और फाइनली माहिरा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं आजाद हो रही हूं उससे। उसकी आंखों में अजीब सी राहत थी। फैजान मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा दाग था, उसने बिना रुके कहा, मैं उसे किसी के साथ इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सकती थी। वो एक गवार नौकरों जैसा आदमी वो मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने जो कहना था सब कह दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अरमान बस उसे देखता रह गया। इस बार वो सच में सोच में पड़ गया था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, नूर और फैजान क्या सच में साथ हैं? उसका चेहरा हल्का सा उदास हो गया। क्या हुआ? माहिरा ने पूछा, लेकिन अरमान ने कुछ नहीं कहा। वो चुप था, क्योंकि उसके अंदर अब शक और बेचैनी दोनों बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ, जहां ये लोग अपने अपने भ्रम और अहंकार में उलझे थे, वहीं नूर और इकबाल एक बिल्कुल अलग जंग लड़ रहे थे। उन्हें अभी इसी शहर में रहना था। नूर के एग्जाम चल रहे थे और उनके पास रहने के लिए पैसे तक नहीं थे। कल की रात नूर अपनी सहेली के साथ यूनिवर्सिटी गुजार आई थी। आज एग्जाम के बाद वो और इकबाल एक छोटी सी सुनार की दुकान पर खड़े थे। नूर के कानों में जो छोटे छोटे टॉप्स थे वो बेचने के लिए आई थी। इकबाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा, दिल भर आया उसका। जिस बेटी को वो हर दर्द से बचाना चाहता था, आज उसी को लेकर वो दर दर भटक रहा था। जबकि नूर की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन वक्त वो हमेशा इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान हमेशा नहीं रहते। जो उन्हें पार कर लेता है वो ही असली जीतता है। शायद नूर और फैजान भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे थे, और जिस दिन ये दोनों इसे पार कर लेंगे, दुनिया देखेगी उनकी असली औकात नहीं, उनकी असली पहचान। सुनार की दुकान से बाहर निकलते हुए इकबाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा बेटा, कभी कभी महंगाई भी काम आ जाती है। ये टॉप्स मैंने तुम्हारे लिए कितने सस्ते खरीदे थे, और आज कितने पैसे मिल गए। नूर ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं अब्बू, उसने धीरे से कहा, एक दिन हम भी महंगे हो जाएंगे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ हिम्मत थी। वो टूट नहीं रही थी, वो बन रही थी। उसे लड़ना था वक्त से, और वो लड़ेगी, क्योंकि वो हारने वालों में से नहीं थी।